नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। और स्वागत करता हूँ द अनचार्टेड स्टोरीज ऑफ महाभारता के एपिसोड 8 में। दोस्तों, आज की कहानी उस नारी पे है जिनका जन्म आग से हुआ था। जी हाँ, और वो है द्रौपदी। वैसे द्रौपदी के जन्म से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हैं और ज़्यादातर उनके पिछले जन्म से रिलेटेड है, लेकिन फिलहाल अभी मैं उनके जो करंट बर्थ है लाइक एज द्रौपदी, उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा। असल में ये एपिसोड मेरा जो 6th एपिसोड था द्रोणाज रिवेंज, ये उसके कंटिन्यूएशन में भी है। खैर, जिन्होंने वो एपिसोड नहीं सुना है, मैं उनके लिए एक छोटा सा फ्लैशबैक बता देता हूँ कि राजा द्रुपद से गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की मदद से, मतलब उनके शिष्य थे कौरव और पांडव लोग, तो वो कौरव और पांडव लोगों की मदद से क्या करते हैं कि राजा द्रुपद का आधा राजपाट छीन लेते हैं। अब आधा राजपाट छीन जाने के बाद राजा द्रुपद कसम खाते हैं कि वो भीष्म पितामह, कौरव, पांडव और द्रोणाचार्य इन सब से बदला लेंगे, और इसी गुस्सा में वो तपस्या करते हैं शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। अब शिवजी तपस्या से प्रसन्न हो जाते हैं और वो पूछते हैं कि मांगो क्या वर चाहिए राजा द्रुपद से। तो राजा द्रुपद उनसे वर मांगते हैं कि मुझे एक बेटा दीजिए जो द्रोणाचार्य को मारे, एक बेटा जो भीष्म पितामह को मारे, और एक बेटी जो पूरे कुरु डायनेस्टी, पूरे कुरु खानदान के बंटवारे का बहुत बड़ा रीज़न बने, और इनडायरेक्टली मतलब उसको ख़त्म करने का बहुत बड़ा रीज़न बने। अब शिवजी बोलते हैं कि ठीक है, तथास्तु बोल के चले जाते हैं। अब कुछ समय बीतता है और कुछ साल के बाद राजा द्रुपद के यहाँ एक लड़की पैदा होती है, लेकिन लड़की जो पैदा होती है उसके बारे में वहाँ पे जो ऋषि मुनि रहते हैं उनकी भविष्यवाणी ये रहती है कि ये लड़की बाद में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक लड़का में, मतलब इसका जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और ये भीष्म पितामह के मौत का बहुत बड़ा रीज़न बनेगा या फिर आखिरी रीज़न बनेगा, और इसका नाम शिखंडी होता है। अब राजा द्रुपद अपने इस बच्ची से खुश नहीं होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी डाउट होता है कि पता नहीं ये बच्ची उनके बदले को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या फिर ऊपर से ऐसी भविष्यवाणी भी हुई है कि बाद में जाके ये जेंडर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो वो बहुत खुश नहीं थे। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि दो मुनियों को बुलाते हैं, जय और उपजय। अब इन दो मुनियों में खास बात ये होती है कि इनको एक ऐसा जादुई पोषण, मतलब जादुई काढ़ा बनाना आता था कि अगर उस काढ़े को अगर आप किसी को पिला दो, मतलब किसी औरत को पिला दो, तो आपको लड़की पैदा होना निश्चित है। अब इसीलिए राजा इन दो मुनियों को बुलाते हैं। अब दो मुनि आके अपना यज्ञ हवन करके, पूजा उजा करके ये वो जादुई काढ़ा बनाते हैं, लेकिन जब वो उस काढ़े को रानी को पिलाने की बारी आती है तो वे लोग कहते हैं कि राजा से कहते हैं कि रानी को बुलवाइए। तो रानी को जब बुलवाने के लिए ये लोग भेजते हैं तो रानी वापस रिप्लाई भिजवाती है कि वो नहा रही है, तो वो उस टाइम पे नहीं आ सकती है। अब ऋषि मुनि लोग किसी का भी वेट नहीं करते थे, चाहे आप राजा हो, चाहे रानी हो, चाहे कोई भी हो। अब उनको ये बात बड़ा इंसल्ट लगा, तो वो क्या करते हैं कि गुस्से में ये जो काढ़ा रहता है उसको आग में फेंक देते हैं, जो हवन में यूज हो रहा था आग उस टाइम पे। अब इसी काढ़ा जो आग में चला जाता है उसमें से दो बच्चे, जुड़वा बच्चे निकल के आते हैं, एक लड़का और एक लड़की। तो जो लड़का होता है उसका नाम होता है धृष्टद्युम्न, जो कि बाद में जाके द्रोणाचार्य को मारता है, और जो लड़की होती है उसका नाम होता है द्रौपदी। तो ये कहानी थी द्रौपदी के जन्म की, और इसलिए कहते हैं कि द्रौपदी का जन्म जो है वो नॉर्मल गर्भ से नहीं हुआ था, वो आग से जन्मी थी। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको द्रौपदी के जन्म से रिलेटेड एक और छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो उनके पिछले जन्म से रिलेटेड है, मतलब उनके पिछले बर्थ से रिलेटेड है। कहते हैं कि पिछले जन्म में द्रौपदी एक ऋषि मुनि की वाइफ थी। अब वो ऋषि मुनि बहुत बीमार रहते थे, उनको हर तरह का रोग था, कोढ़, घाव, कमजोरी, मतलब हर तरह का बीमारी था उनको। लेकिन ऋषि मुनि की वाइफ उनका बहुत ध्यान रखती थी, उनका बहुत सेवा करती थी, और इसी सेवा से ऋषि मुनि बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बीवी से कहते हैं कि तुम कोई वर मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अब ऋषि मुनि की वाइफ जो थी वो कहती है कि मुझे जीवन में प्यार नहीं मिला और वो जो सेक्सुअल प्यार है वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ है, तो मेरी ख्वाहिश यही है कि मैं हर रूप में हर तरह से मैं प्यार करना चाहती हूँ, या इंटरकोर्स या फिर सेक्सुअल फीलिंग्स को वो अपना बाहर रखती है। अब ऋषि मुनि कहते हैं ठीक है, तो ऋषि मुनि क्या करते हैं कि अपने यौगिक शक्तियाँ यूज़ करते हैं और फिर अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, जो भी उनका ख्वाहिश रहता है हर तरह से दोनों आपस में प्यार करते हैं। अब कुछ समय के बाद ऋषि मुनि कहते हैं कि उनका समय हो गया है, अब वो पृथ्वी को त्यागना चाहते हैं। लेकिन उनके ये बात कहने से ऋषि मुनि की जो वाइफ होती है वो उनको कहती हैं कि आपके जाने के बाद मेरी ख्वाहिशों का क्या होगा। अब इस बात से ऋषि मुनि बहुत भड़क जाते हैं, वो गुस्से में इनको श्राप देते हैं, अपनी बीवी को श्राप देते हैं कि अगले जन्म में तुम्हें एक नहीं मल्टीपल पार्टनर्स मिलेंगे पति के रूप में। तो ये एक पिछले जन्म की कहानी थी दोस्तों। इसी तरह द्रौपदी के पिछले जन्म से रिलेटेड, या इनफैक्ट द्रौपदी से रिलेटेड, मैं कुछ और कहानियां आपके सामने अगले एपिसोड में लेके आऊंगा। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मेरा मकसद आप लोगों तक सिर्फ अनसुनी और रोचक कहानियाँ पहुँचाने तक का है, बिना किसी रिलीजियस बिलीफ को चोट पहुँचाए हुए। इस एपिसोड के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ रोचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए कुछ सुनाओ यार में, ओनली विथ अमित रवानी।